अब जहन्नम के मनाजर तलफहु लाम फा हा इसका रूट है लफहुन लाम फा हा लफेहा। अरबी ज़बान में कहते हैं अहरका को जलाना, यानी इस तरह से किसी को जला देना कि जैसे उसकी पहचान ही ख़त्म हो जाती है ना। और वहुम फीहा काले हुन, काले हुन का लफ्ज़ है ये काले हुन की जमा है कालेह, और कालेह लफ्ज़ अरबी ज़बान में किसको कहते हैं इसको आप थोड़ा सा इसकी डिक्शनरी से समझ जाएं। जब बंदा जलता है ना, अल्लाह ना करे अगर कोई जले, तो आप देखते हैं कि उसकी स्किन जो होती है ना ये पीछे चली जाती है और दांत बाहर निकल आते हैं। हज़रत इब्ने मसूद से आता है कि किसी ने उनसे पूछा कि ये काले हून क्या है, तो कहने लगे तुमने बकरे की भुनी हुई सिरी नहीं देखी कभी। कहा देखिए। कहा वो हैं काले हून कि जब जहन्नुम में डाले जाएंगे तो जब इनकी सिरियाँ जलेंगी तो इनकी खाल सिकुड़ जाएगी और दांत बाहर आ जाएंगे। कलूख कहते हैं कि जब बंदे का ये होंठ जो है ना ये लटके, ऊपर का होंठ इतना फूले कि ये ऊपर चला जाए और नीचे का लटक के नीचे आ जाए और बाहर से दांत निकल जाए। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। आग कभी सुकेड़ती है इंसान को और कभी जलाती है, और वो शख्स जिसके होंठों से उसके दांत न छुपे वो होता है कलू। और कहा क्या जाएगा, अलम तकुन आयाति तुतला अलैकुम फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। देखिए कसूर क्या निकला, आयतों को झुटलाना ना। ये नहीं कहा काफिरून तकफुरून तुकज़्ज़िबून, ये कौन करते हैं, मुसलमान करते हैं। काफिर तो इनकार करता है, मुसलमान मान के भी नहीं मानता। क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक्वतुना, हम बदबख्त ग़ालिब आ गई हमारी बदबख्ती। शिकवा शकी से पीछे पड़ चुके हम, बदबख्त सईद का ऑपोजिट होता है। और कुन्ना क़ौमत दालीन दालेह की जमा, उस वक़्त मानेंगे रब्बना अख़रिजना मिन्हा, निकाल इस जहन्नुम से। फ़ाइन उदना फ़ाइन्ना ज़ालिमून, अगर हम दोबारा नाफरमानियाँ करें तो हम बहुत ज़ालिम हैं। काल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून, पड़े रहो इसमें मुझसे कलाम ना करो। हसन बसरी फरमाते हैं अहले जहन्नुम का ये आखिरी कलाम होगा जिसके जवाब में हुक्म होगा कि अब हमसे कलाम ना करो, फिर वो किसी से कुछ कलाम ना कर सकेंगे, यानी बोलने की ताकत छीन ली जाएगी बात करने की। फिर जानवरों की तरह एक दूसरे की तरफ भौंकेंगे। अल्लाह अकबर। बहकी की एक रिवायत है, मोहम्मद बिन काब से कहते हैं कि कुरान पाक में अहले जहन्नुम की 5 दरख्वास्तें यानी 5 एप्लीकेशंस नकल की गई हैं। इनमें से 4 का जवाब दिया गया और 5वीं के जवाब में कहा गया ला तुकल्लिमोनी, हमसे कलाम भी ना करो, और ये उनका आखिरी कलाम होगा और इसके बाद वो बोल ही ना सकेंगे। किसी से नाराज़गी की इंतहा ये होती है कि आप उससे बात करना छोड़ देते हैं। सच मेरा ख्याल है कि जो ज़ुबान से नहीं समझते ना वो किसी की खामोशी से डर जाते हैं। आप देखिए कि शौहर जब बात करना छोड़ दे ना तो बंदे को लगता है कि अब मामला गड़बड़ है। औलाद के साथ देखें, अब तो औलाद शायद इसकी फिक्र करे ना करे, वो भी कहते हैं चलो शुक्र है नहीं बोल रही माँ तो ना ही बोले, लेकिन शऊर वाले शख्स के लिए ये बहुत तकलीफ दे बात होती है कि कोई उससे बात भी ना करे। ऐसे वक्त में क्या हाल होगा उनका जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की जो नहीं सुनी। देखिए सिंपल सी बात है, जिसने ज़िंदगी में कलाम अल्लाह की कदर नहीं की, ये अल्लाह का कलाम बोल रहा है ना, तो वहाँ अल्लाह नहीं कलाम करेगा, तो वो कहेंगे हु केयर्स, नहीं तो ना से। लेकिन अल्लाह उनको बता रहे हैं कि तुम्हें ये जो कुछ किया जा रहा है इसकी वजह क्या है कि फ़इन्नहु काना फ़रीक़ु मिन इबादी यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वअंत खैरुर राहिमीन। एक एक लफ्ज़ में मोहब्बत छलक रही है अल्लाह की, मेरे बंदों में से एक गिरोह था। ये नहीं कहा कि वो कुछ लोग थे, मेरे बंदे मिन इबादी, क्या पता चला कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले अल्लाह के बंदे होते हैं। क्या कहते थे वो लोगों को, नमाजें पढ़ो, नहीं अपनी फिक्र थी उनको, रब्बना आमन्ना, अल्लाह हम ईमान ले आए और ईमान के तकाजे पूरे करने की कोशिश करते हैं, फिर भी गुनाह हो जाते हैं, लिहाजा फ़ग़फ़िर लना, बख्श दे हमारी ख़ताओं पे ना जा बल्कि वरहमना, अपना रहम भी डाल दे, यानी वहाँ तक जहाँ हम अपने आमाल के ज़रिए से ना पहुँच सकें तो वहाँ हमें अपनी रहमत से पहुँचा दे। लिहाजा क्या होगा, वन तखैरुर राहिमीन, तू बड़ा रहम वाला है। वो तो बेचारे सीधे साधे थे, तुमने पता नहीं उनको क्यों मौलवी के नाम से मशहूर कर दिया। तुम्हें वो बड़े बुरे लगते थे, फ़त्तख़ज़्तुमूहुम सिख्रिया, तुम उनका मजाक उड़ाते थे। सुख्र, सहर, किसी को हकीर समझना, उसका मजाक उड़ाना। हत्ता अनसौकुम ज़िक्री, तुम्हें ये भी भूल गया कि मेरी बात वो करते हैं, मेरी याद ही भूल गई। तुम्हें ये भी लाज ना रही कि ये किसकी तरफ तुम्हें बुलाते हैं। वकुंतुम मिनहुम तदखकून, और तुम इन पर कह कहे लगाते थे। सोचिए ज़रा, जब लोग दीन की बुनियाद पे किसी का मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी पे मजाक उड़ाते हैं, किसी के हिजाब का मजाक उड़ाते हैं, तो ऊपर आसमान पे ये आवाज़ें आती होंगी ना कि तुमने मुझे बीच में से निकाल ही दिया। अब तो आप सोचें कि उनकी रही सही सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी कि ये क्या हो गया, हमने जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। इन्नी जज़ई तुहुमुल यौम बिमा सबरू, किसका जवाब है ये पीछे मांगी हुई दुआओं का कि जब कोई दीन पे तुम्हारा मजाक उड़ाए तो को रब्बिन आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन। उन्होंने सब्र किया, अल्लाह ताला ने उनको बदले दिए। वअन्नहुम हुमुल फाइज़ून, और वही कामयाब होने वाले हैं। अब इसके बाद बिल्कुल आखिरी जो आयतें, और ये जो पूरा हम पढ़ रहे थे ना, ख़ास तौर पर यहाँ से आगे, कहते हैं कि ये इतनी जलाल वाली आयतें बोझल हैं कि एक मौके पे एक सहाबी कहीं गए तो उस शख्स पर जिन का साया हुआ हुआ था, तो बड़ी बेवकूफ़ों वाली और तकलीफ़ देह हरकतें कर रहा था। तो उन्होंने इनको कहा भाई कुछ इसका इलाज करो, कुछ उन्होंने किया तो वो ठीक हो गया शख्स। बाद में अल्लाह के नबी के पास जब आए तो कहने लगे, अल्लाह के नबी मुझे नहीं पता था, बस मैंने उस वक़्त जाके सूरत मोमिनून की आखिरी आयतें पढ़ी थी। तो आपने फरमाया कि तुम्हारे इस अमल से कितने जिन हलाक हो गए। अब मैं आपको ये बात बताते हुए भी डर रही हूँ कि कहीं आप ये वजीफा ना बना लें कि जिन्हों को भगाना है तो ये आयतें पढ़े। नहीं, अब इस शऊर से सुने कि क्या पैगाम क्या इन आयतों का, कि जो इंसानों के दिलों को तो छोड़े जिन्हों के दिलों को हिला दे। अब इस अंदाज से ज़रा सोच लीजिए, काला कम लबिस्तुम फिल अर्दी अदद सिनीन, अल्लाह ताला फरमाएगा बताओ ज़रा कितने साल तुम ज़मीन में ठहरे रहे। अंदाज से पता चलता है कि ये गुनाहगारों से सवाल होगा, मन मौजियाँ करने वालों से, ज़िंदगी की कदर ना पहचानने वालों से, वक्त की अहमियत ना पहचान जानने वालों से पूछा जाएगा। कालू लबिसना यौमन उबाद यौमिन फसलिल आदीन, कहेंगे हम ठहरे थे बस एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। आप पूछ लीजिए साल गिनने वालों से, यानी जो हर साल साल गिरे मनाते थे, उनसे ही पूछ लें। हमें तो लग रहा है बस एक दिन की ज़िंदगी थी, आधे दिन की। अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, एक दिन के लिए इंसान ना ख़त्म होने वाली आखिरत दाव पे लगा दे। देखिए, हम यहाँ बैठते हैं ना, चंद घंटे होते हैं, गुजर ही जाते हैं ना। आपको भूख लगती होगी तो आप क्या कहते हैं, चलो अब एक ही दफ़ा घर जाके खाऊंगे। आपका को नींद भी आएगी, आप आराम भी करना चाहेंगे। आप कहते हैं कोई बात नहीं, 2 घंटे की बात है, घर जाएंगे फिर काम कर लेंगे। सोचिए, क्या ये असूल हम आखिरत के लिए नहीं ले सकते। खाला लबिस्तुम इल्ला कलीला, इरशाद होगा तुम नहीं ठहरे मगर थोड़ा अरसा, यानी इस दुनिया के मुकाबले में, आखिरत के मुकाबले में तो बहुत ही थोड़ा रहे हो ना। लौ अन्नकुम कुन्तुम तालमून, काश तुम इस हकीकत को पहले ही जान लेते। आज तो मान गए हो, आज तो समझ गए हो, पहले ही मान जाते। तुमने ज़िंदगी को क्या समझा और ज़िंदगी क्या निकली। अफहसिब तुमन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान कर रखा था कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया, अबस पैदा किया, बेकार खेल तमाशे फ़न के लिए पैदा किया। ये पहला सवाल है। और दूसरा, वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम हमारी तरफ लौटाए ना जाओगे। क्या सोचा तुमने कि तुम हमारी तरफ लौटाए ना जाओगे। तुमने ज़िंदगी को फन फ्लैक्स समझा, तुमने इस ज़िंदगी की कदर ना की। कीमती वक्त था जिसमें तुम मालदार हो सकते थे, तुमने उसको ज़ाया कर दिया। अब देखिए कि यहाँ अगर रुक के हम सब भी खुद से पूछें, बहुत सारे सवालों का जवाब सिर्फ इस एक आयत में है कि अफहसिब तुमन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या ये गुमान करते इतने नादान हो, तुमने अपनी कदर नहीं पहचानी, तुम्हें नहीं पता अल्लाह ने तुम्हें कितना कीमती बनाया, हैवान और इंसान का फ़र्क तुम्हें नहीं पता था, अक़ल दी फहम दिया, आदम को भेजा, नूह को भेजा, कितनी किताबें तुम्हारी हिदायत के लिए भेजी सिर्फ इसलिए कि तुम फ़न करो, ऐश करो, मौज और मस्ती करो, ना पलटो, तुम बच्चों की तरह खेलते खाते पीते गुजर गए। क्या वजह है कि हमसे अच्छे अमल नहीं होते? 15 पॉइंट्स नोट कर लें फटाफट। क्या वजह है कि लंबी उम्र मिलने के बावजूद अच्छे अमल नहीं कर पाते? नंबर एक, इल्म की कमी। पता ही नहीं है कि करना था कुछ, मालूम ही नहीं कि करना क्या है। दूसरी वजह, सुस्ती। मालूम तो हो गया, अब हो रहा है फिर भी सुस्त है, सो सो के गुजारना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम काम थोड़ा करेंगे, सुस्ती से करेंगे, थोड़ा करने पड़ेगा, हालांकि अपनी ही नेकियों को कम करते हैं। आप इसको सोचते हुए साथ किसी बिजनेसमैन को भी याद रखें ना। एक है जिसको बिजनेस आता ही नहीं, इल्म ही नहीं, फिर दूसरा सुस्त है, देर तक सोने की आदत है, तीसरी चीज़ लापरवाही, केयरलेस एटीट्यूड। बड़े खुद कफील समझते हैं हम अपने आप को नेकियों के मामले में, खूब रखा हुआ काम आएगा अगली नस्लों तक, पता नहीं चलता एक हुलारे में सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर मुनासिब माहौल का मुयस्सर ना होना, इसलिए भी नहीं हम कर पाते कि माहौल ही नहीं ठीक जी हमारा। फिर गैर ज़रूरी और गैर मुफीद कामों में मसरूफ़ होना, सच है कि झूठ? आप निकालें ज़िंदगी से अल्लाह, वो आपके पास बेहतरीन वक्त है, इतना माल बच जाएगा आपके पास अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए, अपनी ज़ात पे लख चीज़ों में इस्तेमाल करने से अलग हो जाए। फिर छठा, अपनी सलाहियतों और कुव्वतों का मालूम ही ना होना, पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या फितरत का शाहकार हूँ मैं, क्या जौहर है मेरे अंदर। फिर सातवीं वजह है दिल की सख्ती, बेहिसी। छोड़ेंगे, देखेंगे। आठवीं चीज़ जो हमें अच्छे काम करने से रोक लेती है, लोगों का डर, लोग क्या कहेंगे। और नवीं चीज़ है हमारे गुनाह। गुनाह बंदे से नेकियों की तौफीक छीन लेते हैं। जब किसी नेकी के काम से दिल उठने लगे ना, उचाट हो, एक रिवर्स गियर लगाने लगे, तो फौरन याद करें ये कोई और मेरा गुनाह है जो मुझसे ये नेकी छुड़वा रहा है। फिर 10 तरजीहात कायम ना कर सकना, प्रायोरिटाइज नहीं करते अपने कामों को। 11वां, अल्लाह से मदद ना मांगना, मांगते ही नहीं तो फिर डरते हैं दुआ मांगते हुए कि अल्लाह हमें मुजाहिदाना ज़िंदगी दे, नहीं नहीं फिर तो बड़ी सख्त हो जाएगी, सारी रंगीनियाँ ही ना ख़त्म हो जाए ज़िंदगी की। फिर नेक आमाल की अहमियत मालूम ना होना। फिर 13वां सबब है कि बास मुश्किलात पर काबू ना पाना, नेकी करने के रास्ते में जो मुश्किलात आती है ना, तो हम उस पर काबू नहीं पा सकते, ऐसे ही नहीं होगा, बस मना हो गया, नहीं कर सकते, हालात ख़राब है, मजबूर हैं, अपने सारे अजर ज़ाया, एक एक कदम जो अल्लाह के रास्ते में उठता था सब ख़त्म, कारोबार हमारा फ्लॉप हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता। फिर 14वीं वजह क्या है कि अपनी मौजूदा हालत और अमल पर ही राज़ी हो जाना, खैर है ना, इतने ही बहुत हैं, हम बहुत ही सब्र आले हैं, जितने अमल हैं बस शुक्र है, दूसरों से तो अच्छे ही है ना, हैं। फिर नेकी के मौके की कदर अफजाई ना करना, कदरदानी ना करना, राज़ी ना होना इस बात पे कि हम ये काम करें तो हमें खैर मिले, इससे फ़ायदा उठाएं, और लॉस है ना, खुद ही कह दिया कौम दालून, हम लॉस थे, बहुत तरफ फैले हुए थे, इधर उधर थे, तो अल्लाह ताला अब सूरत के आखिर में फरमाते हैं फ़तअलल्लाहुल मलिकुल हक। मेरा तो दिल नहीं चाहता तफसीर करने को, मेरा दिल चाहता है मैं अरबी पढूं, तर्जमा भी ना मैं बोलूं और आप समझ जाएं, अब आपको इतना अच्छा तर्जमा याद हो जाए फ़तअलल्लाहुल मलिकुल हक, तो फ़ौरन आपका दिल कहे कि इसका मतलब है बस बड़ा बुलंद है अल्लाह जो बादशाह हकीकी है। किस चीज़ से आला है, बुलंद है? बेमकसद तख्लीक से। वो नादानों की तरह, बच्चों की तरह अबस काम नहीं करता, ऐसे ही बैठे राम की तरह बैठे घर बना दिया, लीला बना दी, सीता के साथ काम कर दिया, ऐसे ही बेकार बेमकसद नहीं। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई इलाह मगर वो, रब्बुल अर्शिल करीम, वो है रब अर्शे करीम का, इज्जत वाले अर्श का रब है, तुम्हें भी इज्जत देना चाहता है। फिर भी वह मैयद उमा अल्लाह इलाहन आखर, और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को पूछता है जिसकी ला बुरहान लहू बिही, इसके पास कोई दलील नहीं उसकी, ऐसे सारे मुशरिकों का क्या हाल होगा? फइन्नमा हिसाबुहु इंदा रब्बिह, तो इसका हिसाब इनके रब के पास होगा, रब लेगा हिसाब इनसे, इस जिंदगी का और इन चीज़ों का। और फैसला क्या सुना दिया, इन्नहू ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक काफिर कामयाब नहीं होंगे। पहली आयत क्या थी सूरत की? कद अफलहल मुमिनून, फला पाई ईमान वालों ने। और आखिर में क्या कह दिया? इन्नहू ला युफ्लिहुल काफिरून, काफिर नहीं फला पाता, चाहे वो दुनिया के अंदर कितने ही काम कर ले, कितनी ही कोशिशें कर ले, क्या करें फिर, कैसे कामयाबी और फलाह लें? दुआएं मांगे रब से। वकुर रब्बे फिर वरहम व अंत खैरुर्राहिमीन। तो ऐ नबी, आप कह दीजिए कि मेरे रब बख्श दे मुझको और रहम फरमा मुझ पर, और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। नबी की दुआ उम्मत को लगेगी अगर उम्मत चाहेगी, खुद भी, अपने लिए भी और उम्मत के लिए भी। और बाज़ ने कहा, चूंकि हमारे नबी को अल्लाह ने ये कह दिया और उन्होंने मांग ली है, तो हम चल रहे हैं वही करने जो हम पहले से करते थे, सब कुछ वही करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में था। यहाँ देखिए, यहाँ एग़फिर और ए रहम, इन दोनों के मफूल का जिक्र नहीं है, यानी कौन सा गुनाह माफ़ कर ये नहीं बताया, और किस चीज़ पे रहम फरमा ये नहीं बताया। क्यों? ताकि जामियत रहे, ये दुआ जामे हो जाए कि हर तरह का गुनाह माफ़ कर दे और हर हाल पे रहम कर दे, मेरा हर कॉल, मेरा फेल, मेरा अमल जो इस दुनिया और आखिरत में मुझे तकलीफ़ देने वाला है, अल्लाह तो उसको अपनी रहमत से माफ़ कर दे, और हर नेकी की तौफीक दे और मुझ पे रहम कर ताकि मैं मज़ीद नेकियाँ करूँ। आप कह सकते हैं कि एक फिर में है मेरे गुनाह माफ़ कर दे, और वरहम में है कि मुझे और नेकियों की तौफीक दे। वन तहैरुर्राहिमीन, और तू बेहतरीन रहम करने वाला है। तो ये थी सूरत अल मोमिनून। हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि हमने कितना ईमान का मज़ा पाया है। क्या आप वाकई चाहते हैं कि ईमान मिले, फतह मिले, कामयाबी मिले? अगर कोशिश करेंगे तो मिलेगी ज़रूर। याद रखिए, अल्लाह की ज़ात हमें कभी किसी ऐसे काम का हुक्म नहीं देते जो हम ना कर सकें, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला हमें उसके ऊपर पूछे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने तो अभी तक आखरत के मामले को संजीदगी से लिया ही नहीं था, ये हमारे कल्चर का हिस्सा ही नहीं। बेटी की शादी का मामला है ना संजीदा, लेते हैं ना लोग अहम, अपना घर बनाना है अहम समझते हैं, बच्चों की तालीम है ना अहम, हर चीज़ को अहम समझते हैं, किताब, आखरत, बस रस्मन दीन की बातें हैं ठीक है, इसको संजीदगी से समझे ही नहीं। तो ज़िंदगी गुजारने के फिर दो ही रास्ते मिले आखिर में, एक है आखरत को भूल कर ज़िंदगी बसर करना, बेअक्लों का ये रास्ता है, और दूसरा है आखरत को सामने रख कर फैसले करना, ये है अक्लमंदों का फैसला। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारा हाल बेहतर करे। अब देखिए, दुनिया में जब बहुत गर्मी होती है ना, आप पाकिस्तान की कोई गर्म दोपहर याद करें, पाकिस्तान में जब बहुत गर्मी होती है तो लोग बाहर से आते हैं ना, तो उनको गुस्सा चढ़ा होता है, एकदम बंदे का मूड बिगड़ जाता है, जब बिजली गई हो, पसीने आ रहे हो, दिल चाहता है मुस्कुराने को। तो आप सोचिए कि दुनिया की गर्मी में मुस्कुराने को दिल ना चाहे तो जहन्नुम में क्या हंसने को दिल चाहेगा? वहाँ तो फिर वाकई काले हून की कैफियत होगी ना, बिगड़ी हुई जली हुई तस्वीरें होंगी ना वहाँ इंसानों की। सुब्हानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।